हरे कृष्णा। आज का विषय है बच्चों को शिक्षा देने का सामान्य तरीका। चार प्रकार के पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा दी जाती है। पहला, पाठ्यक्रम में नियोजित और जो सभी को स्पष्ट दिखता है। दूसरा, दिखाई देता है और वह विधिवत भी होता है। और शेष दो सिखाए जाते हैं किंतु वे पाठ्यक्रम में अदृश्य रूप में रहते हैं। पहले स्तर को नियोजित पाठ्यक्रम कहा जाता है। विद्यालय या शिक्षक या सरकारी कार्यालय जो सिखाने का दावा करते हैं यह वह है। अक्सर इसमें अच्छी पुस्तक के चार्ट्स, कलर कोटिंग इत्यादि होती है। नियोजित पाठ्यक्रम अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए बनाया जाता है। अनेक लोग इसे बनाने, इसे सुधारने और इसका मूल्यांकन करके अपनी जीविका चलाते हैं। जब हम दूसरे स्तर पर आते हैं जिसमें वास्तविक पढ़ाए जाने वाला पाठ्यक्रम होता है, हमें कुछ ठोस या सारगर्भित मिल सकता है। इसके अंतर्गत वह पाठ्यक्रम होता है जो वास्तव में एक शिक्षक पुस्तक, वीडियो या कंप्यूटर प्रोग्राम पढ़ाता है। कई बार वास्तविक पाठ्यक्रम नियोजित पाठ्यक्रम के अनुसार होता है और कई बार नहीं। जैसा कि मानव विज्ञानी मार्गरेट मीड ने कहा था, लोग जो कहते हैं, लोग जो करते हैं और लोग जो कहते हैं कि वे जो करते हैं, तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तीसरा स्तर छिपा पाठ्यक्रम शिक्षा देने का यह एक प्रबल तरीका है और पुस्तकों के प्रकाशक जानबूझकर इसका उपयोग करते हैं। अधिकांश समय शिक्षक भी ना जानते हुए इसका उपयोग करते हैं। छिपे पाठ्यक्रम में कक्षा के नियम, पुस्तकों में दिए गए चित्र, चीजों को समझाने के लिए प्रयुक्त शब्द और किसकी प्रशंसा की गई है और किसका उपहास उड़ाया गया है, सब आता है। अधिकतर छिपे पाठ्यक्रम द्वारा ही बच्चे जीवन के मूल्यों, धारणाओं, स्वीकृत सामाजिक व्यवहार और स्वयं अपनी छवि के विषय में सीखते हैं। उदाहरण, एक सरकारी स्कूल में प्रशासक का कार्य करते हुए जब मैं 12 वर्षीय बच्चों की कक्षा में गई तो शिक्षक ने बच्चों को उनके प्रिय रेस्टोरेंट का नाम बताने के लिए कहा। फिर वह मेरी ओर मुड़ी जब मैंने कहा कि मैं अक्सर रेस्टोरेंट में नहीं खाती तो शिक्षिका को विश्वास नहीं हुआ। बच्चे अपनी आंखें घुमाते हुए उपहासजनक आवाजें निकालने लगे और शिक्षिका ने उन्हें ऐसा करने से मना नहीं किया। मुझे लगा मानो वहां मैं एक अछूत बन गई। ऐसा नहीं है कि शिक्षिका बच्चे को सिखाती है रेस्टोरेंट में नहीं खाना सामाजिक दृष्टिकोण से अजीब और गरीब बात है, किंतु कुछ ना कहते हुए भी उसका संदेश स्पष्ट था। एक अन्य उदाहरण में पाठ्य पुस्तक में बैल से खेती करते एक किसान का चित्र था और उसने नीचे लिखा था, अविकसित देशों में अभी भी लोग खेती की आदिकालीन तकनीकें अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक और पुस्तकें किसी विशेष जाति, धर्म अथवा वस्तु को अन्यों से अधिक महत्व देती है तो उन पर उन शिक्षाओं का अधिक प्रभाव पड़ेगा। चाहे आप उन्हें समानता, धर्म निरपेक्षता आदि के बारे में कितना भी क्यों ना समझाए। चौथा स्तर असामान्य अथवा रद्द पाठ्यक्रम कहलाता है। इसे बिना कुछ कहे या लिखे पढ़ाया जाता है। उदाहरण, यद्यपि पाश्चात्य देशों की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न जातियों के परिवारों के चित्र दिखाए जाते हैं, अधिकांश चित्र उपनगरों में रहने वाले मध्यवर्गीय परिवारों के होते हैं। अधिक धनी नहीं, अधिक निर्धन नहीं, कुछ एक परिवार जो खेती करते हैं और किसी भी परिवार में 3 से अधिक बच्चे नहीं हैं और अधिकतर किसी धर्म का पालन ना करने वाले, ऐसे चित्र। इसके द्वारा बच्चों को अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ाया जाता है कि इसके अतिरिक्त जीवन कुछ है ही नहीं, या यदि है भी तो वह असामान्य है। अमान्य पाठ्यक्रम एक प्रबल मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है कि उन्हें समाज में क्या बनना है। इतना ही नहीं, पूरी शिक्षा के दौरान कुछ विषयों या जानकारी को जानबूझकर छिपाया जाता है और उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से बताया जाता है कि उन विषयों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है अथवा उनमें कुछ दोष है। नियोजित पाठ्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से इवोल्यूशन के विषय में कुछ अधिक नहीं होता, अधिक से अधिक पुस्तकों में इस पर एक अध्याय होता है जिसे देखकर शायद हमें खतरे का अंदेशा नहीं होगा। वास्तविक पाठ्यक्रम में एवोल्यूशन पर शिक्षा विभिन्न विद्यालयों और शिक्षकों पर निर्भर करती है। अनेक कक्षाओं के नियोजित पाठ्यक्रम की पुस्तकों में इस विषय पर अध्ययन नहीं होते, किंतु जब अन्य विषयों के साथ जुड़कर इसका विषय निकलता है तो शिक्षक इससे सहमत होते हुए इसकी चर्चा करते हैं। छिपे पाठ्यक्रम में एवोल्यूशन आगे पीछे ऊपर नीचे चारों ओर भरा है, यहाँ तक कि विज्ञान की पुस्तकों के बाहर भी। इतिहास की एवं अन्य पुस्तकें ऐसे चित्रों से भरी रहती हैं जिनमें काल्पनिक आदि मानवों के पत्थरों से लड़ाई करते हुए एवं युद्ध करते डायनासोर के चित्र होते हैं। कहानियों के पात्र एवोल्यूशन के सिद्धांत का वर्णन ठोस सच्चाई के रूप में करते हैं। विज्ञान एवं इतिहास की पुस्तकें उन अविश्वसनीय तरीकों का वर्णन करती हैं जिनसे एवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्राणियों का उनके वातावरण के अनुरूप विकास होता है। इतिहास और भूगोल की पुस्तकें एवोल्यूशन के अनुमानों से भरी रहती हैं, विशेष रूप से इससे कि एवोल्यूशन द्वारा सभ्यता प्रगति कर रही है, जैसे मानव लो युग से प्रगति करता हुआ स्वर्ण युग में आ गया है और औद्योगिकरण से पूर्ण की सभ्यता को आधुनिक जीवन से निम्न या घटिया दिखाया जाता है। इवोल्यूशनवादियों के अनुसार सभी मानवीय विशेषताओं, व्यवहार, लिंगों में भेद और इत्यादि का आधार केवल यह है कि जो स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल पाया वह टिका रहा और अन्य नष्ट हो गए। अपने अस्तित्व को बनाए रखना और प्रतिस्पर्धा को विभिन्न प्रकार के शरीरों, मानसिक प्रवृत्तियों और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के पीछे एकमात्र कारण बताया जाता है। प्राणियों को मशीनें कहा जाता है और अधिक से अधिक व्यक्ति की पहचान उसके मस्तिष्क से की जाती है। वे मानते हैं कि आधुनिक विज्ञान की स्थापना से पूर्ण आदि मानव ने प्रकृति के कार्यों को समझाने के लिए धर्म की रचना की और मानने लगे कि भगवान एक व्यक्ति है। आधुनिक शिक्षा पर शायद अमान्य पाठ्यक्रम की पकड़ सबसे मजबूत है। पाठ्य पुस्तकों में ऐसे प्रमाणों की चर्चा नहीं की जाती जो एवोल्यूशन के सिद्धांत का खंडन करते हैं। एवोल्यूशन के अतिरिक्त सृष्टि की रचना का वर्णन करते अन्य सिद्धांतों की या तो चर्चा नहीं की जाती या उन्हें आदिम संस्कृति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले महान व्यक्तियों की सूची में ऐसे लोगों का बिल्कुल उल्लेख नहीं आता जो आध्यात्मिकता में अत्यंत उन्नत थे। यदि किया भी जाता है तो उनके आध्यात्मिक जीवन का वर्णन नहीं होता। पुस्तकों में ऐसे प्रयोग सिद्ध प्रमाणों का कोई उल्लेख नहीं होता जो बताते हैं कि शरीर से परे भी कुछ है। यद्यपि अनेक विख्यात विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने शरीर के बाहर अनुभवों और मृत्यु के निकट के अनुभवों पर अनुसंधान किए हैं, यद्यपि बच्चों को प्रत्यक्ष यह सब नहीं सिखाया जाता, वे तुरंत सीख जाते हैं कि एवोल्यूशन के अतिरिक्त अन्य कोई भी सिद्धांत अस्वीकार्य है और यहाँ तक कि मानसिक अस्थिरता का लक्षण है। एक समय में एक सरकारी विद्यालय में अतिथि अध्यापिका के रूप में 12 वर्ष के बच्चों को गणित पढ़ा रही थी कि मुझे इसका एक चौंकाने वाला अनुभव हुआ। छात्र सीख रहे थे कि कैसे अंशों को जमा या घटा करने के लिए सामान्य विभाजक ढूंढा जाए। उदाहरण 3/4 एवं 5, 6 में सामान्य विभाजक 12 है। मैंने बताया कि जमा या घटा करने के लिए वस्तुओं में समानता होना आवश्यक है। मैंने बताया कि कैसे हम सेब और संतरों को जमा नहीं कर सकते। यदि हम दोनों को फल माने तो हम जमा कर सकते हैं। एक छात्र ने कहा, पूरी कक्षा ऐसे उदाहरणों को सोचने लगी जिसमें एक सामान्य विभाजक ढूंढकर भिन्न प्रतीत वस्तुओं को जमा किया जा सकता है। क्या कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिन्हें कभी भी जमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें कुछ भी समानता नहीं होती? एक छात्र ने अंततः पूछा, हाँ, यह विचार किए बिना कि मेरा उत्तर क्या उलझन उत्पन्न कर सकता है? मैंने कहा, तुम कारों और लोगों को जमा नहीं कर सकते, वे पूरी तरह एक दूसरे से भिन्न हैं। और फिर बच्चों ने मेरे साथ क्या बहस की? नहीं, दोनों ही अणुओं और परमाणुओं से बने हैं। उत्तेजित होकर उन्होंने कहा, मुझे लगा था कि बच्चे तुरंत मेरे उदाहरण से सहमत हो जाएंगे, किंतु उनके उत्तर से मैं बहुत चक्की रह गई। शायद मैं भूल गई थी कि उन्हें अमान्य पाठ्यक्रम में क्या सिखाया जाता था। मैंने तुरंत स्थिति को संभालने का प्रयास किया। व्यक्ति जीवित होता है, वह केवल वस्तु नहीं है। जीवन मृत पदार्थ से भिन्न है। शरीर कार के ही समान वस्तु है, किंतु जीवन शरीर से भिन्न है। एक जीवन शक्ति उसी प्रकार शरीर को चलाती है जैसे चालक कार को। मेरा तर्क सुनकर छात्र स्तब्ध रह गए। चूंकि मैं उनके शिक्षक का थी, उन्होंने मेरी बात को सत्य स्वीकार कर लिया, किंतु क्योंकि मैं उन्हें इतनी अपरिचित और विचित्र बात बता रही थी, वे समझ नहीं पाए कि उसका उत्तर कैसे दें। इन छात्रों के मनों में अमान्य पाठ्यक्रम द्वारा यह बात गहराई से बैठा दी गई थी कि जीवन और जड़ पदार्थ में कोई भेद नहीं है। उन्हें कभी इस दिशा में सोचने का विकल्प भी नहीं दिया गया। हरे कृष्णा। अगर आप चाहते हैं ऐसे धार्मिक मैसेजेस हर दिन आपको प्राप्त होते रहे, तो अपने नाम और शहर के साथ 9987949494 9987949494 स्कॉन डिजायर ट्री के नंबर पे मैसेज करें। धन्यवाद।